Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, 4th Adhyaya, 18th Mantra hai. Uchcharan kare. यदातमस्तन्नदिवानरात्रिर्न सन्न चासंच्छिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितोर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणे. यदा अतमः तत् न दिवा न रात्रिः न सत् न च असत् शिव एव केवलः तत् अक्षरं तत् सवितुः वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी. प्रसंग चल रहा है ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति. पूर्व में जो साधक लोग जानते हैं वे पूर्ण रूप से अमृत स्वरूप को प्राप्त होते हैं, अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हो जाते हैं. एक है फिर जो साधक लोग जानकर सच्चिदानंद रूप होते हैं वे परमात्मा और कैसे हैं, उसका ज्ञान होने पर क्या होता है. जब ये अमरण धर्मा हो गए तो जितना भी मरण धर्मा संस्कार है, संसार है, द्वैत है, इस पूरे की निवृत्ति होती है. तो यहां इसमें दिया कि कालत्रयपि मुक्तो प्रलयादो परमात्मा कूटस्थ. ये मुख्य बात क्या विषय चल रहा है, संबंध भाष्य इसका छोटा सा. तीनों काल में मुक्ति के अवस्था में प्रलय के अवस्था में भी वह सच्चिदानंद ब्रह्म कूटस्थ ही रहता है. कोटस्थ रहता है इसका मतलब है कि किसी प्रकार का विकार रहता नहीं है. और संसार जो होता है ये विकारों से युक्त है. तो संसार विकारों से युक्त है. छह विकार अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते और विनश्यते. ये छह विकारों से युक्त है. तो इसका बीज हिरण्यगर्भ में है तभी यह संसार ईश्वर में है, तब ये भी विकारी बनता है. सभी जो ब्रह्म है या ईश्वर है उसमें द्वैत का अंश है, द्वैत का बीज है, तब उससे यह संसार बनता है. लेकिन जो कूटस्थ है वह थोड़ा अलग निर्विकार है. जैसे पंचदशी में जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, चार चैतन्य के भेद कर दिए. जीव ईश्वर और ब्रह्म और कूटस्थ चार, घटाकाश महाकाश मेघाकाश जलाकाश, चार आकाश वहां, चार आकाश की और चार चैतन्य की कल्पना करके समझाया. इसी प्रकार यहां भी कूटस्थ ब्रह्म, कूटस्थ चैतन्य अलग और ब्रह्म चैतन्य अलग. अब ब्रह्म चैतन्य बोलने पर हो सकता है एक को हम बहुत श्याम उसमें कुछ अपना द्वैत के अपना संसार के बीज होते हैं उसको प्रकट करते हैं एक को हम बहुत श्याम, लेकिन कूटस्थ है उसका स्वरूप वहां कुछ भी नहीं है. तो इसे यहां बोल दिया तीनों काल में प्रलय की अवस्था में मुक्त अवस्था में वह ब्रह्म परमात्मा कूटस्थ यह है. ऐसा निश्चय हो जाने के बाद में उसका फल क्या है, जब वह कूटस्थ यह है तब उसके ऊपर आने वाली ये जागृत अवस्था है, ये स्वप्न अवस्था है, ये एकमात्र भ्रांति है। तीन वाद मानते हैं, जो बनाया जाता है उसका नाम है आरंभवाद, जो बनता है हो जाता है परिणामवाद, और कुछ भी नहीं है विवर्तवाद। जो अजातवाद तो अलग है चौथा, लेकिन नहीं है, दिखाई दे रहा है और नहीं है, और दिखता ही नहीं है ये अजातवाद, दिखाई देता हुआ नहीं है ये विवर्तवाद। दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन तभी भी नहीं है, अपनी भ्रांति है, भ्रांति अपनी प्रतीति मात्र है। तो कूटस्थ का यहां विवेचन चल रहे हैं, यदा आतमः मन जिस समय तम रहित अवस्था हो जाती है, अर्थात तम मानी जो अविद्या है, ये पूर्ण रूप से अविद्या समाप्त हो जाती है। ये संसार क्या है, अविद्या का ही तो परिणाम है, अविद्या का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त, ब्रह्म का विवर्त और अविद्या का परिणाम है। जब अविद्या ही चली जाएगी तब अविद्या का परिणाम जगत भी कहां रहेगा। इसलिए वह यदा अतमः माने अविद्या समाप्त होती है, तत् माने उस समय, ना दिवा न रात्र, दिन और रात्र ये अविद्या के कारण ही है, अविद्या के कार्य है, कारण समाप्त होते ही कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए ना दिवा न रात्र बोल दे, न सत न असत, सत का अर्थ होता है भाव पदार्थ, धर्म अधर्म, और असत का अर्थ है भाव अभाव पदार्थ, ना भाव पदार्थ रहता है ना अभाव पदार्थ रहता है। किस समय, जिस समय पूर्ण रूप से अविद्या का नाश हो जाता है। ये सब द्वैत है, द्वंद्व है ना, सत असत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, दिन रात्र, ये सब क्या है, सुख दुख द्वंद्व है, और ये सब सुख दुख द्वंद्व किसके कार्य हैं, अविद्या के कार्य। पर अविद्या नाश हो जाने के बाद में सबका खंडन किया जा रहा है, सबका निषेध, जब कारण ही नहीं है तो कार्य भी रहेगा नहीं है। फिर वो क्या है, एकमात्र केवल शिव एव केवल, मैंने शिव के ऊपर अविद्या समाप्त हो जाती है, तब ऊपर से अध्यस्त दिखाई देने वाला भासने वाला वो कुछ भी नहीं है और अकेला ही रहता है। जो अकेला रहने वाले शिव है वे कैसे हैं, तद अक्षरम, वे अक्षर है, नक्षरतीति अक्षर, तत् व सवितुर वरण्यम, उसको सवितुः माने सूर्य अभिमानी, जो सूर्य मंडल के अभिमानी देवता, सूर्य मंडल अलग और सूर्य मंडल के अभिमानी देवता अलग, यह हमें दिखाई देता है, सूर्य मंडल दिखाई देता है और अभिमानी देवता अलग। जैसे गंगा माता बह रही है, ये तो उसका भौतिक रूप है, वो देवी है क्या, देवी चिन्मय शरीर अलग, देवी नहीं बह रही है, देवी का भौतिक रूप बह रहा है, मंडल बह रहा है और देवी अलग ही है। भीष्म पितामह को माता की याद आते ही तुरंत जाते पास में तो एक दिव्य शरीर आता क्या नहीं, वो अधिष्ठात्री देवी गंगा, भौतिक जो जल बह रहा है उसकी देवी। इसी प्रकार सूर्य मंडल भौतिक और उसके अभिमानी देवता सूर्य है, उनके द्वारा वे वरण्य है, संभजनीय है। उनको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए, और वो प्रज्ञा कहां से आएगी, तस्मात प्रसृता, जिसको प्राप्त करना है उसी से ये प्रज्ञा भी आई है। तस्मात प्रसृता माने जो अक्षर है, तत्पद का लक्ष्य है, सूर्य भगवान के द्वारा पूजित है, उनको प्राप्त करने के लिए बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि भी उन्हीं के द्वारा आती है और वह बुद्धि पुरानी है। भाष्य देखिए, यदा इति, यदा यस्याम अवस्थायाम अतमः, यस्याम अवस्थायाम जिस यदा मने जिस समय, यस्याम अवस्थायाम जिस अवस्था में, अतमः माने तम रहित जो अवस्था होती है उसी को और थोड़ा सा बढ़ाते अर्थ करते हैं, न तम अस्य इति अतमः, न तम अस्य इति अतमः, जो तम नहीं है उसको बोलते हैं अतम। ये अवस्था अर्थात उसका और भी अतम की क्या परिस्थिति है, कैसा हो सकता है, अतम अवस्था कैसी आ सकती है, उसके लिए बताते हैं। तत्त्वम आदि वाक्य जन्य ज्ञानेन दीपस्थानीयेन दग्ध अविद्या तत्कार्य रूप तमसकत्वात्। तो जो अविद्या समाप्त हो जाती है, अतम हो जाते हैं, जो बोल रहे हैं अतम है, तो अतम कब हो सकता है, तो बोलते हैं तत्त्वम तत्त्वमसि तत्त्वमी आदि वाक्य जन्य अर्थात तत्त्वमसि महावाक्य गुरु के द्वारा प्राप्त होने के बाद में उस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है अर्थात वह मैं हूं। गुरु बोलेंगे वह तू है और बाद में अनुभव यदि हो जाएगा वह मैं हूं, इसी को तो बोला जाएगा तत्त्वम आदि वाक्य जन्य ज्ञान। मैं महावाक्य से अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं वह ज्ञान ब्रह्म हूं, इस प्रकार का ये ज्ञान है ना दीपस्थानीय, यही जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान ऐक्य का ज्ञान, ये कहां रखना है दीपक के स्थान में रखना है, माने ज्ञान दीप है, तो इस दीपक के द्वारा क्या हो जाएगा दग्ध अविद्या, माने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या दग्ध हो जाती है, क्योंकि दीपस्थानी होने के कारण ये बताते हैं वाक्य जन्य ज्ञानेन दीपस्थानीयन माने दीपक रूपी ज्ञान अग्नि के द्वारा ये अविद्या जलती है समाप्त होती है दग्ध हो जाती है, तब उसका कार्य भी समाप्त हो जाता है। क्यों उसका कार्य अविद्या का कार्य तम है अंधकार स्वरूप है, जो ज्ञान दीप प्रकट हो जाने के बाद में अंधकार रूपी जो तम है वह भी समाप्त हो जाता है। तो अविद्या और उसका कार्य जो तम अंधकार अज्ञान अंधकार, अज्ञान समाप्त हो जाता है तो अज्ञान अंधकार भी चला जाता है, जैसे सूर्य चला जाता है तो सूर्य की आभा भी चली जाती है, इसी प्रकार जब अविद्या चली गई तो अविद्या का जो आभा मनितम अंधकार वो भी चला जाएगा। और अविद्या का कार्य क्या है आवरण और विक्षेप, अविद्या का कार्य क्या है अविद्या मन्य जानना अज्ञान, माने अज्ञान के दो पुत्र होते हैं या दो शक्तियां, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति, ये दो शक्ति होते हैं। जैसे दो रस्सी पड़ी थी, रस्सी का हमें अज्ञान हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रस्सी के अज्ञान के माध्यम से दो शक्तियां वहां प्रकट हो गई, एक आवरण शक्ति प्रकट हो गई और दूसरी विक्षेप शक्ति, एक ही अविद्या के दो शक्तियां उत्पन्न हो गई, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति ने रस्सी को ढांक दिया, विक्षेप शक्ति ने उसमें सर्प उत्पन्न कर दिया, दोनों का कार्य अलग अलग। आवरण शक्ति ने रस्सी को ढक दिया, आवृत कर दिया, आच्छादन कर दिए, और विक्षेप शक्ति ने सर्प को उत्पन्न कर दी, मैंने अन्यथा उत्पन्न करना विक्षेप, और जो है उसको दबा के रख देना ये आवरण शक्ति दोन। अब यहां ज्ञान दीपक के द्वारा तत्वमस्यादि वाक्य के द्वारा जो आवरण है, अब क्या बोलते हैं अज्ञान है अविद्या है, मूल ही समाप्त हो गया तो उसकी शक्तियां भी स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका कार्य आदि सब समाप्त हो जाते हैं, अंधकार तमसकत्वाद माने अज्ञान रूप अंधकार आदि सब चला जाता है। जिस समय अविद्या अविद्या का कार्य समाप्त हो जाता है तदा तदा क्या होगा उस समय में माने तत्काले न दिवा माने दिवा आरोपी नास्ती, माने जब तक उस ब्रह्म रस्सी के ऊपर रस्सी का जब तक अज्ञान था तब तक रस्सी से हम डरता, रस्सी के अज्ञान के कारण हमें अनर्थ की प्राप्ति हो रही थी, किधर भागो देखो काट ना ले, ये अनर्थ की प्राप्ति हो रही थी और उसके ज्ञान से अनर्थ की निवृत्ति हो गई, मैंने अधिष्ठान के ज्ञान से उसके ऊपर जो अविद्या अज्ञान था उसका अज्ञान मैंने उसके अज्ञान नष्ट होते ही अनर्थ की निवृत्ति समाप्त हो गई। तो ये पूरा का पूरा संसार अनर्थ का ही तो कारण है। जब उसका ज्ञान हो जाता है किसके द्वारा हो गया, अविद्या का नाश हो जाने पर, उस समय दिन नहीं रहता है, अर्थात ये जड़ दिन आदि जो भी है ये दिन नहीं रहता है, मन इसका आरोप नास्ति, ना रात्रि है, अर्थात ना ये द्वंद्वात्मक का निषेध चल रहे हैं, एक ही रहता है अविद्या समाप्त हो जाने के बाद में, तब ये जड़ प्रकाश रूपी सूर्य नहीं रहता है या अंधकार रूपी रात्रि भी नहीं रहती है, चाहे निद्रा रूपी सुसुप्ति कहिए या जागृत रूपी प्रकाश कहिए, कुछ भी रहता नहीं है, क्योंकि आपको वहां जाना है। चिदानंद रूप कोटस्थ का निरूपण चल रहा है, इसलिए जो भी दिखाई दे रहा है उसका निषेध, दिखाई दे रहा है लेकिन अध्यास मात्र है। मैं वहां गया था, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। ये विवर्तवाद दिखाई दे रहा नहीं है भैया, वो दिखाई दे रहा है प्रतीति मात्र है, अध्यास है, पहले बोल दिया हमने। उस कूटस्थ में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था एकमात्र भ्रांति का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? भ्रांति का मतलब अध्यस्त है, रस्सी के ऊपर सर्प अध्यस्त है, अध्यस्त है, कल्पित है, अध्यस्त कहिए कल्पित कहिए। इसी प्रकार यहां पर भी वास्तविक वहां दिन का आरोप नहीं हो सकता है, ना रात्रि का आरोप हो सकता है। इति सर्वत्र अनुसंगः, अर्थात किसी का आरोप नहीं हो सकता है, ये सर्वत्र अनुसंग करना है, अर्थात कार्य सत का, अब सत के बारे में आ जाएगा, पहले रात्र दिवान नहीं है, अभी सत के साथ भी आरोप नहीं हो सकता है, असत का भी आरोप नहीं हो सकता है, इसको अनुसंग बोलते हैं। सर्वत्र अनुसंग मान ये आरोप नहीं हो सकता है, ये सभी के साथ संबंध करते रहो। न सत अर्थात वहां बोले सत्ता आरोपोपी नास्ति, सत का अर्थ है भाव पदार्थ, जो स्थूल पदार्थ है दिखाई दे रहे है उसको एक प्रकार से सत बोलते, या पुण्य को बोलते सत, या कार्य कारण जो भी दिखाई दे रहा है भावात्मक इसको बोलते हैं सत, व्यवहारिक दशा में कार्य कारण जो दिखाई दे रहा है उसको सत बोलते हैं व्यवहारिक में, एक व्यवहारिक दशा में जो सत कार्य कारण दिखाई दे रहा है इसका भी आरोप उसमें नहीं हो सकता है। किसमें? कूटस्थ में, माने अविद्या समाप्त हो गई तो एकमात्र कूटस्थ है, वहां किसी का आरोप नहीं होता है। न असत, असत का अर्थ है भावात्मक, पहले भावात्मक बोले अब अभावात्मक, माने अभावात्मक भी कोई वहां नहीं है, मतलब अभाव का भी वहां पर आरोप वास्तविक नहीं है, केवल कल्पित है, चाहे भाव हो अभाव हो जो भी व्यवहार का हम प्रयोग कर रहे हैं व्यवहार दशा में, ये सब के सब उसमें अध्यस्त है, कल्पित है, मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। फिर वास्तविक नहीं है तरी तत्त्वम सर्वत्र शून्यम एव जातम इति बौद्ध मत अविशेषम आशंक्य आह। फिर बोले फिर तो बहुत बढ़िया भैया, तब तो जो है सब कुछ आपका जो तत्त्वम तरी तत्त्वम जो तत्व है कूटस्थ आपका जो तत्व का निरूपण चल रहा है कि उस समय कुछ भी नहीं रहता है सबका निषेध कर रहा है तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा जो तत्व है वो तो शून्य हुआ। जिस तत्व का आपने बोला यदा अतम मैं तम का निराकरण हो जाता है तब उसमें दिवा रात्र नहीं है सत नहीं है असत नहीं है सब का निषेध कर रहे है, तो आपका जो तत्व है वह तत्व एक प्रकार से शून्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत होने लगेगा, माने बौद्ध, क्योंकि उनका शून्य परिमाण है, शून्य परिमाणवाद शून्यवाद बोले सर्वम शून्यम शून्यम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम अलग अलग उनके सिद्धांत है, तो ये बोलते हैं कि एक बौद्ध का सिद्धांत यहां पर उपस्थित होने लगेगा, ऐसी किसी की शंका। मैंने बौद्ध मत अविशेष, मैंने बौद्ध मत में और इसमें कोई अंतर नहीं है, अविशेष मैंने कोई विशेषता ही नहीं है। इसका मतलब ये आपका तत्व एक प्रकार से उन्हीं के तत्व का निरूपण चल रहा है, ऐसा किसी के मन में आशंका हो सकती है, तो उसके लिए निराकरण के लिए बोलते आह शिव एव इति। शिव एव केवल बाद एक एक शब्द का देते हैं ना, शिव एव। अब शिव एव बोलने पर शून्य नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ है एव का, शिव एव। शिव बोलने पर शून्य का निराकरण एव, मैंने शून्य अपना शून्य जो कुछ भी नहीं है कैसा कह सकते है? कुछ तो है, क्या है? शिव है, शिव ही है, ही से एवकार से एक है, तो एक है तो फिर शून्य कहां रहा? शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं है, और इसलिए शिव एव कर दिया एवकार अवधारणार्थ। शिव एव शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव अर्थात शुद्ध है, इसका मतलब है सभी विशेषणों से व्यावृत है। जगत जो दिखाई दे रहे ये विशेषणों से विशिष्ट है, मानी जो शिव यहां दिखाई दे रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, संसार भी कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये सत्यम शिवम सुंदरम संसार दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? विशिष्ट है, विशेषणों से युक्त है, और ये कैसा है? विशेषणों से रहित। हमें जो विशेषणों से युक्त दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, अस्थि भाति प्रिय नाम रूप, ये पांचों के पांचों रूपों से ये संसार उपपन्न है, पांचों के पांचों घट है, घट दिखाई दे रहा है, घट प्रिय है, हो गया पांचों के पांचों, घट है सत आया, घट दिखाई दे रहा है भाति आया, घट हमारे लिए प्रिय है क्योंकि पानी का साधन है प्रिय, हमारे लिए नहीं दूसरे किसी के लिए तो होगा। माने प्रत्येक वस्तु वस्तु के साथ तीन विशेषण लगे हुए, अस्थि भाति प्रिय, और स्वयं उनका नाम और रूप है। तो जो नाम और रूप है ये नाम रूप के साथ अस्थि भाति प्रिय है, घट दिखाई दे रहे, घट है, घट प्रिय है, ये जो अस्थि भाति प्रिय विशेष है और घट विशेषण, तो विशेषण से विशिष्ट की प्रतीति हो रही है, और विशिष्ट की जब प्रतीति हो रही है तो ये एक प्रकार का व्यवहार चल रहा है, और यहां पर कूटस्थ बोलने पर विशेषणों से रहित। अब ये दिवा, ये दिन है, ये रात है, चलो है तो आया है, दिखाई दे रहा है प्रिय, यही तो शिव है, लेकिन ये केवल नहीं है, शुद्ध नहीं है, जो सत्यम शिवम सुंदरम ये संसार दिखाई दे रहा है। हरदेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नैव भिन्न तनु इति यस्य मति सा परमार्थ गति। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, दोनों में भिन्न नहीं है, ये सामान्य प्रतीति नहीं है, ये जगत को उसके साथ जोड़कर बोल रहे हैं। और यहां पर ये जो जगत विशेषण के रूप में जुड़ा हुआ है अस्थि भाति प्रिय के साथ, उसका निराकरण किया जा रहा है। शिव एव मैंने विशेषणों का निराकरण, शुद्ध स्वभाव शिव, न शून्यम इति निपातः अर्थः, न शून्यम ये शून्य नहीं है, ये किससे पता चलता है? निपात अर्थ,